डायबिटीज की अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें तीन बातें हैं। एक तो कई मरीजों को सिर्फ आहार पर नियंत्रण रखकर ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखा जा सकता है, और कुछ मरीज है कि जिनको आहार पर नियंत्रण रखना है और साथ साथ दवाइयां भी दी जाती है, मुंह से खाने वाली दवाइयां दी जाती है। और तीसरे थोड़े से ऐसे भी मरीज है कि जिनको डाइट प्लस इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो इन तीनों ट्रीटमेंट में कौन सी बात वह कॉमन है जो तीनों में आती है, वह है आहार। इसलिए डायबिटीज के मरीजों में आहार सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर हमें पूरी खुल करके चर्चा करनी चाहिए। आहार के मुख्य रूप से छह घटक है, छह उसके कंपोनेंट्स है। एक है कार्बोहाइड्रेट्स कि जो हमें रोटी चावल ऐसे ज्वार बाजरा मक्का की रोटी आदि से मिलते हैं। दूसरे है प्रोटीन की जो अलग अलग दालों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, दूध से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भल नॉन वेजिटेरियन आहार में बहुत ज्यादा प्रोटीन है परंतु उसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं। तीसरा है चर्बी कि जो भी तेल घी साथ साथ दूध और इस प्रकार के अन्य पदार्थों में भी चर्बी है। चौथी बात है विटामिन्स, अलग अलग विटामिन्स है, विटामिन ए बी सी डी ई आदि कि जो हमें फलों से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं, दूध आदि से भी मिलते हैं। और है अलग अलग मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक, ऐसे विभिन्न मिनरल्स है कि जो भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इस प्रकार के केमिकल्स है कि जो मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्री रेडिकल्स निर्माण होते रहते हैं, और यह फ्री रेडिकल्स की जो हानिकारक असर है उस हानिकारक असर को रोकने के लिए यह एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं कि जो हमें अंकुरित गेहूं मेथी मूंग चना आदि से बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। फलों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जो बहुत ही मदद रूप है। तो यह आहार की जो छह मुख्य बातें हैं, छह मुख्य कंपोनेंट्स है। अब एक एक पर हम विचार करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। जब हम सीधा ग्लूकोज या चीनी लेते हैं तो वह खून में भी तुरंत ही रक्त की शुगर को बढ़ा देता है, परंतु जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं रोटी के रूप में चावल के रूप में तो वह धीरे धीरे खून में शुगर को बढ़ाता है कि जो वास्तव में आवश्यक है। और जितना हो सके उतना गेहूं का भी पूरा आटा हम लेते हैं। मैदा है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है परंतु उसमें रेसे न होने के कारण, फाइबर बिल्कुल न होने के कारण वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और करीब हमें 55% जो हमारा आहार है वह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी ब्रेड के बदले आप रोटी लेंगे तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और दलिया भी, जिसको गेहूं की लापसी कहते हैं, कि दलिया भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि जब हम उसका पूरा आटा बना देते हैं तो कहीं सूक्ष्म मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए दलिया के रूप में भी अगर हम गेहूं को ले सके तो वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ प्रोटीन, प्रोटीन के विषय में कहीं गलत मान्यताएं हैं, कहीं समझते हैं कि हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, वह तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। परंतु अनुसंधानों के द्वारा देखा गया है कि हमें करीब 10-15% ही प्रोटीन की आवश्यकता है, और प्रोटीन के जो मूलभूत घटक है अमाइनो एसिड्स, भल शाकाहारी अन्न में फर्स्ट क्लास अमाइनो एसिड्स कम है, परंतु वह सेकेंड क्लास अमाइनो एसिड्स भी आपस में मिल करके फर्स्ट क्लास जो अमाइनो एसिड्स है वह बन सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं, उल्टा डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा प्रोटीन हानिकारक है, क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा असर वह किडनी पर होती है, और अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो किडनी पर विपरीत असर होगी और किडनी फेल भी धीरे धीरे हो सकती है। आज कई अनुसंधान हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि शाकाहारी अन्न वास्तव में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और कई लोग कि जो पहले मांसाहारी थे परंतु यह अनुसंधानों को समझ करके ही वह धीरे धीरे शाकाहारी अन्न का सेवन करने लगे हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता है, परंतु थोड़ी सी ही मात्रा में आवश्यकता है। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट है चर्बी। चर्बी की भी हमें आवश्यकता है, अगर हम बिल्कुल नहीं लेंगे तो मस्तिष्क की रचना है वह चर्बी से ही हुई है, परंतु चर्बी की हमें अधिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना घी तेल का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। दूध को जब लेंगे तो उसमें आवश्यक मात्रा में फैट है वो हमें उपलब्ध होती है, और चर्बी का भी जब हम सेवन करते हैं तो ऑयल्स में हमें सैचुरेटेड फैट की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट अर्थात कि जो घी तेल बाहर जब हम रखते हैं तब ठंडी में जम जाते हैं, वह शरीर में जाकर के भी खून की नलिकाओं में जमने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें अनसैचुरेटेड फैट की आवश्यकता है। अनसैचुरेटेड में भी दो प्रकार है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड चर्बी, तो उनकी हमें आवश्यकता है, परंतु किसी भी एक इसका एक रेशियो चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड चर्बी का एक रेशियो आवश्यक होता है, परंतु किसी भी ऑयल में यह रेशियो ठीक नहीं है, इसलिए वास्तव में हमें रिफाइंड ऑयल अलग अलग प्रकार के लेने चाहिए, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, परंतु सबसे अच्छा तो यह है कि हम उसको बदलते जाएं। अगर एक मास आपने एक फिल्टर्ड ऑयल का यूज किया है तो दूसरा मास आप दूसरा फिल्टर्ड ऑयल यूज करिए, कि जिससे वह रेशियो है वह करीब करीब एक जैसा हमें आवश्यक है वैसा रेशियो मिल सकता है। और चीजों को फ्राई कर करके न ले, जब हम आलू को बॉईल करके लेते हैं तो भी उसमें अधिक कैलोरी है, करीब 50 ग्राम में 50 कैलोरी है, परंतु जब हम उसे फ्राई करते हैं तो उसकी कैलोरी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसके कारण सिर्फ छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल जो यूज होता है उतना ही कम से कम हम ऑयल ले, या तो जब भी फ्राई करते हैं, समोसा बनाते हैं, बटाटा वड़ा बनाते हैं, उसे फ्राई करने से इतना अधिक ऑयल यूज होता है कि जो डायबिटीज के लिए सचमुच हानिकारक है। जितना हो सके उतने हमें ज्यादा विटामिन्स लेने चाहिए, और वो क्यों जरूरी है कि शरीर को शक्ति चाहिए, और वह शक्ति कैसे आएगी, जैसे हम पहले के समय में जानते हैं कि लकड़ियां जला करके खाना बनाया जाता था। अगर किसी के घर में बहुत सारी लकड़ियां हो परंतु माचिस ना हो तो क्या होगा, आग नहीं जलेगी और खाना नहीं बनेगा। अगर वह व्यक्ति रोज लकड़ियां लाता रहे परंतु माचिस न लाए तो उसके घर में कभी भी भोजन नहीं बनेगा। ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर में भी होती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन फैट लेते हैं, परंतु विटामिन्स का सेवन नहीं करते हैं तो वह माचिस का काम करता है, और वह जो एनर्जी का निर्माण होना चाहिए वह एनर्जी का निर्माण नहीं होता है। वास्तव में जब बच्चा मां के गर्भ में है तब वह मां के शरीर से ही इतने सारे विटामिन्स अपने शरीर में ले लेता है कि जो उसे करीब 20 साल तक चलते रहे। इसलिए बचपन में जब आवश्यक मात्रा में हम विटामिन्स नहीं लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु 20-25 वर्ष के बाद हमें कमजोरी आने लगती है, पता चलता है कि सचमुच जो शक्ति होनी चाहिए, ताजगी का अनुभव होना चाहिए, वह ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा है, शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये विटामिन्स बहुत ही जरूरी है कि जो हमें सब्जियों से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं, तो उसका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। भले फलों में भी कैलोरी है, परंतु और तत्व इतने अच्छे हैं कि जिसके कारण संतुलित रूप से फल भी लिए जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। और फल कब लेने चाहिए? फलों को अगर आम तौर पर हम खाने के ऊपर फल खाते हैं, परंतु जब भी हम आम भोजन करते हैं तब हमारे पेट का जो नीचे का हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, कि ताकि आहार वहीं पर डेढ़ दो घंटे तक रहे और उसका ठीक प्रकार से पचन हो। परंतु फलों का पचन करने के लिए इतने समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की ही आवश्यकता होती है। तो अगर खाने के ऊपर हम फल खाएंगे तो वह वहीं पर दो ढाई घंटा तक रहेंगे और वह सड़ने लगेंगे, उससे और जो विषैले तत्व है वह निर्माण होने लगेंगे। इसलिए फल खाने का सबसे अच्छा समय है कि नाश्ते के करीब दो ढाई घंटे के बाद फल खाइए, ताकि वह तुरंत ही आधे एक घंटे में उसका पूरा पचन है वह हो जाता है और अधिक से अधिक मात्रा में अच्छे तत्व है वह खून में भी प्रवेश हो सकते हैं। ऐसे ही भोजन और रात्रि के भोजन के बीच में करीब 4:30-5 बजे भी फल खाइए कि जिससे वह भी पूरे पूरे उसके अच्छे तत्व है वह खून में मिल सके। और फल हमें खाने ही चाहिए, यह नहीं है कि डायबिटीज में फल नहीं खाने चाहिए, सिर्फ कुछ फलों को छोड़ करके। पर कई डॉक्टर्स तो आपको यह भी कहेंगे कि आप सब फल खाइए, परंतु क्योंकि कैलोरी भी महत्वपूर्ण है इसलिए कुछ फल जैसे कि केले, चीकू, सीताफल, आम, ये इन फलों को छोड़ करके और सभी फल कि जो बहुत ज्यादा मीठे नहीं है, अगर अंगूर बहुत ज्यादा मीठे नहीं है तो वह हमें उसका जरूर सेवन करना चाहिए। और जो मीठे फल बताए वो इसलिए हम सेवन ना करें क्योंकि उसको बहुत कम मात्रा में खाना होगा। अगर आप आधा केला भी खाएंगे तो उससे करीब आपको 70-80 कैलोरीज मिल जाएगी, और यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ आधा केला खाए। और साथ साथ उसमें जो शुगर है, भले अलग प्रकार की शुगर है परंतु वह भी शुगर है, इसलिए केले का और जो दूसरे फल बताए उसका आप सेवन ना करें। ऐसे ही सब्जियां भी हमें अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। वास्तव में जितना आप रोटी, चावल, दाल आदि खाते हैं उतना ही करीब हमें कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। और सलाड्स के रूप में जब आप अलग अलग कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है और विटामिन्स भी है। और कच्ची सब्जी या तो सलाड खाने का सबसे अच्छा समय है कि भोजन से पहले लीजिए, क्योंकि भोजन से पहले जब आप सलाड लेंगे तो उससे पेट भी भर जाएगा और वो ऐसा समय है कि जब शरीर में हमारे जठर में पर्याप्त मात्रा में एसिड होता है कि जो सलाड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। विशेष रूप से रात्रि के भोजन में सलाड्स को न लीजिए कि कईयों को गैस होने की संभावना है और उसके कारण उनको दिक्कत हो सकती है, पचन की क्रिया है वह ठीक से न हो पाए, उसमें भी थोड़ी मुश्किलात आ सकती है। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे हैं, जो भी अंकुरित चीजें हैं वो अंकुरित गेहूं, मूंग, चना, मेथी, वह जरूर नाश्ते में भी थोड़ी मात्रा में ले और भोजन में भी थोड़ी मात्रा में ले। उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये अंकुरित चीजों को खाने के लिए उसे हल्का सा भी उबाल दे, क्योंकि दो प्रकार के तत्व है इन अंकुरित चीजों में। एक तो ऐसे तत्व है कि जो आहार में लोह तत्व आयन को खून में मिलने में वह रोकता है, और साथ साथ में हमारे ही शरीर में एक एंजाइम है वह ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को यह इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, इसलिए भी पचन के क्रिया में तकलीफ हो सकती है। परंतु उसे हल्का सा उबालने से इस प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। तो अंकुरित चीजें भी हमें आहार में जरूर सेवन करनी चाहिए और अच्छी मात्रा में पानी पिए। और पानी कौन से समय पर पिए, सवेरे उठने के तुरंत बाद आप धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाइए। आज आप बिल्कुल नहीं पीते, एक ग्लास पीते तो बस डेढ़ ग्लास दो ग्लास पानी पिए, ऐसे सवेरे सवेरे भी आप धीरे धीरे चार ग्लास पानी भी पी सकते हैं। और खाने के कुछ समय बाद, करीब दो ढाई घंटे के बाद भी आप एक दो ग्लास पानी पी सकते। ऐसे सारे दिन में कम से कम हमें 12 से 13 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए, जो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों को ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो शरीर के वजन को बढ़ाए नहीं, या तो अगर मरीज का शरीर का भार पहले से ही अधिक है तो उसे कम करने में वह आहार मदद करे। इसलिए हम भर दिन में 6 बार खाएं। वास्तव में कहा गया है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा है कि हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा अगर भोजन लिया जाता है तो वह धीरे से ब्लड शुगर बढ़ती है और फिर से वह कम होने लगती है। अगर हम दिन में 2 बार ही खाते हैं तो एक बार ब्लड शुगर है वह बहुत बढ़ जाती है और फिर कम होने से भी वह आवश्यकता से भी ज्यादा कम हो जाती है। और जब खून में कैलोरीज नहीं होती है, हम काफी लंबे समय तक नहीं खाते हैं, तो शरीर को यह मैसेज मिलता है कि आहार नहीं मिल रहा है और इसके कारण शरीर उसकी आवश्यकता को या तो एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करता है। जैसे अगर अचानक आपकी इनकम कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब शरीर को कई घंटों या तो एक सारा दिन भोजन नहीं मिलता है तो शरीर यह समझता है कि यह शक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए वह उसका उपयोग कम करने लगता है और जिसके कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। परंतु फिर कुछ घंटों के बाद तो आप पूरा पेट भर के खाते हैं तो वह जो ज्यादा शक्ति शरीर में गई वह जमा होकर के चर्बी के रूप में रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर 3-3.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा हम खाएं। और यह सचमुच संभव है कि नाश्ता जरूर करें। कोई भी व्यक्ति को कभी नाश्ता त्यागना नहीं चाहिए। विशेष रूप से माताएं बहनें ध्यान रखें कि बच्चों को जब हम स्कूल में भेजते हैं तो कई बार नाश्ता करे बिगर ही उन्हें भेज देते हैं, परंतु क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके मस्तिष्क को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा नाश्ता जरूर करना चाहिए। और हम भोजन करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, इसे 3 बार तो हम भोजन करते ही हैं और बीच में 2 समय जिसे फ्रूट टाइम कहा गया है कि करीब 11:30 बजे और 4:30 बजे, तब अगर कुछ फल लिए जाए तो उसका सबसे अच्छा परिणाम भी होता है और शरीर को जो शक्ति की आवश्यकता है वह शक्ति भी शरीर को मिलती रहती है। तो ऐसे हमें 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और कैलोरीज को भी हम काउंट करना सीखे। बहुत कम खाने से वजन कम नहीं होता है। वास्तव में अगर हमें 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है और हम करीब 1500 कैलोरी लेते हैं तो वह जो 500 कैलोरी हमने कम ली वह वास्तव में मदद रूप होती है। और ऐसे 500-500 कैलोरी आप कम लेते जाते हैं तो करीब 1 किलो चर्बी से 7,500 कैलोरी बनती है। तो जब आप 7,500 कैलोरी कम लेंगे तो आपका वजन 1 किलो कम होगा। 1 किलो चर्बी है वह पेट से कम होगी, शरीर के अंगों से कम होगी। तो इस प्रकार से प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी चर्बी और कैलोरीज कम ली जाए तो एक मास में करीब 2-3 किलो वजन है वह कम हो सकता है, कि जो बहुत ही अच्छा है। और हमें कैलोरीज को काउंट करना भी सीखना चाहिए कि एक बार जब भी आप आहार ले रहे हैं, आपने नाश्ता लिया है या भोजन कर रहे हैं, कि एक बार में ही आपको जितना खाना है, 2 रोटी खानी है, चावल लेने हैं, सब्जी लेनी है, वह सब चीजें एक साथ ले ले और करीब करीब अप्रोक्सीमेटली ये समझ ले कि इसमें कितनी कैलोरीज है। तो अगर कैलोरीज का आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप नहीं खाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूं कि करीब 6 इंच की पतली रोटी में 80 कैलोरी होती है, ऐसे ही एक वाटी चावल में भी 80 कैलोरी होती है, एक वाटी दाल में, मीडियम साइज की एक वाटी दाल में भी करीब 80 कैलोरीज है, और शुगर वाली चीजों में बहुत ज्यादा, जो तली हुई चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरी है। कि अगर आप एक बटाटा वड़ा या एक समोसा लेंगे तो उसमें 200 से 250 कैलोरी है। तो इसलिए ये चीजें जैसे आगे भी बताया है कि उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। और फलों में कितनी कैलोरी है, फलों में भी कैलोरी जरूर है, एक मीडियम साइज का एप्पल होगा तो उसमें भी करीब 80 कैलोरीज है, ऐसे ही एक मौसम्बी में, संतरे में भी 80 कैलोरीज है, ऐसा ही एक ग्वावा या तो अमरूद में भी करीब 80 कैलोरीज है। सिर्फ जो फल मैंने बताए हैं कि जो हमें नहीं लेने चाहिए उसमें, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा है, इसके ही कारण वह न लेना अच्छा है। जब हम सलाड्स लेते हैं तो सलाड में भी कैलोरी है, परंतु वह बहुत कम मात्रा में है। अगर आप करीब पाव किलो कोबीज लेते हैं या पाव किलो ककड़ी लेते हैं तो उसमें सिर्फ 50 कैलोरीज है। आलू, सूरन या तो स्वीट पोटेटो, उसमें अधिक कैलोरी है, करीब 50 ग्राम आलू लेंगे तो उसमें 50 कैलोरी है। अगर आलू खाना है तो छिलके सहित खाए या तो अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करीब करीब भी आपको पता चल जाए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। नाश्ते में करीब हमें 400 कैलोरी लेनी चाहिए, दिन के भोजन में भी 350-300 कैलोरी, और रात्रि के भोजन में भी आप 250-300 कैलोरीज ले सकते हैं, और बीच में आप फल भी लेंगे तो इसे 1400-1500 कैलोरी हम लेते हैं। दूध के विषय में कुछ कॉन्ट्रावर्सी भी है। वास्तव में जो शाकाहारी है उनको दूध की आवश्यकता है, परंतु कईयों का यह मानना है कि जिस प्राणी का दूध है वह उसके ही बच्चे के लिए अच्छा है। जैसे मां का दूध ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छा है, परंतु जो हम भैंस का दूध या गाय का दूध लेते हैं वह माना गया है कि वह अच्छा नहीं है। कुछ डायबिटोलॉजिस्ट यह भी मानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जब उन्होंने मरीजों को कहा कि आप दूध का सेवन न करें तो उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगी, परंतु दही के रूप में हम या तो छाछ के रूप में दूध को ले सकते हैं, उसमें कई तत्व जैसे कि कैल्शियम, विटामिन B12 आदि बहुत ही अच्छे हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और आहार के विषय में और कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो शांति से खाएं, समय निकाल करके भोजन करने के लिए बैठे। कहा जाता है कि जो भोजन करने में कम समय देता है, जल्दी जल्दी भोजन करता है, उसे लेटरिन में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उसे ठीक प्रकार से दस्त नहीं होता है। इसलिए अच्छा तो यह है कि भोजन करते समय ही हम ठीक से टाइम दे और धीरे धीरे चबा करके खाए तो उसका पचन भी ठीक से होगा और कम मात्रा में आपको संतुष्टि होगी। थोड़ा थोड़ा जब हम अच्छी तरह से चबा करके खाते हैं तो तब हमें संतुष्टि भी अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से टीवी देखते देखते कभी भी भोजन ना करें, क्योंकि टीवी देखते समय अगर हम खाते हैं तो टीवी में जो चित्र देख रहे हैं उसके भी हमारे मन पर असर होती है, उसके भी हमारे इमोशंस पर असर होती है, और वो इमोशंस पर असर होने के कारण भी या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगेगी या भूख बिल्कुल मर जाएगी। वह भावनाओं का, इमोशंस का भी हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। तो आहार सबसे महत्वपूर्ण है डायबिटीज के लिए, और ऐसे ही हम आहार करें कि जो वास्तव में एक दवाई का काम करे। कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं आहार के बारे में कि चाय पिए या न पिए। भले आम डॉक्टर तो आपको यह कहेंगे कि भले आप चाय पीजिए क्योंकि चाय में कोई कैलोरीज नहीं है, परंतु मैंने जो बात बताई कि हम पेनक्रियास को आराम देना चाहते हैं, साथ साथ में जो सारे अंगों में शरीर में रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स को भी हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं ताकि कम इंसुलिन काम करने लगे। इस लक्ष्य से मैं ये राय देता हूं कि चाय कॉफी न ले। और ऐसे भी चाय कॉफी स्वास्थ्य के लिए इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो एक बार तो शक्ति मिल जाती है, हमें लगता है कि मेरे में बहुत शक्ति आ गई, परंतु थोड़े समय के बाद वह शक्ति कम हो जाती है, जहां से आपने शुरू की उससे भी वह शक्ति कम हो जाती है। तो क्या होता है, आप दूसरा कप चाय पीते हैं तब थोड़ी शक्ति बढ़ती है, फिर से आधे घंटे के बाद वह शक्ति और भी कम हो जाती है। ऐसे सारे दिन में देखते जाओ तो अंत में हम सचमुच शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इसलिए चाय कॉफी की आवश्यकता नहीं है, उससे अच्छा है कि सोया कॉफी पीजिए। वह कैसे बनती है कि सोयाबीन जो मिलता है वह सोयाबीन को इस प्रकार से तवे पर आप भून दे ताकि वह काला न बन जाए परंतु लाल रहे। मिट्टी के कणों के बीच में भी उसे भुना जा सकता है ताकि वह लाल रहे, और जब वह लाल हो जाए फिर उसका पाउडर बना दे, और वह यह जो सोयाबीन का पाउडर है वह चाय की जगह पर आप एक चम्मच या इतना डाल करके वह सोया कॉफी पियेंगे तो भी उसी प्रकार की असर होती है, परंतु उसमें कैफीन नहीं है, और सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन है। इसलिए भी इस सोया कॉफी की अगर धीरे धीरे आदत डाल दे तो वह बहुत ही अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स कहीं पूछते हैं कि अलग अलग थम्सअप, पेप्सी, कोको कोला, यह हम ले या न ले, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज है और कोई अच्छे तत्व नहीं है। उल्टा कुछ प्रकार के एसिड्स भी है कि जो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, उसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी प्यास लगी हो तो भले आप मिनरल वाटर पीजिए, परंतु ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वह सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन न करे, और डायबिटीज में तो आप पर उल्टा हुआ बुरा प्रभाव भी डालेंगे। इस प्रकार से और एक अच्छी चीज है कि जो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, परंतु डायबिटीज का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हमें ब्लड शुगर को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। दिन में एक बार या दो बार भोजन से पहले इसबगोल ले, इसबगोल जो मिलता है, तो इसबगोल जब आप भोजन से पहले लेते हैं, शुरुआत भले आप एक चम्मच से करें, एक चम्मच इसबगोल लेकर के उस पर पूरा एक ग्लास पानी पी जाए, ताकि वह पेट में जाकर के फूल जाता है, और जिससे एक तो हमें संतुष्टि भी होगी, और ये इसबगोल जब आप भोजन से पहले लेंगे तो वह इंजन का काम करता है कि वह खाने को इंजन की तरह नीचे ले जाएगा और जल्दी से वह शरीर के बाहर फेंक देगा, और जब आहार जल्दी से शरीर के बाहर जाता है तो भी आंतों पर उसकी बुरी असर नहीं होती है, और उसका एब्सॉर्प्शन भी, उसमें जो तत्व है, आपने चर्बी ली है, प्रोटीन लिया है, तो उनका खून में जो मिलना है वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है। और इसबगोल वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला भी तत्व है, इसलिए शुरू में आप भले एक बार रात्रि के भोजन से पहले इसबगोल का सेवन कीजिए, और अगर वह आपको सूट होता है तो दिन के भोजन से पहले भी आप इसबगोल का सेवन कीजिए, तो वह भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में साथ साथ डायबिटीज के नियंत्रण में भी हमें बहुत मदद करता है। और डायबिटीज के विषय में लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम करेले का जूस ले, क्या हम नीम का जूस ले, क्या हम और प्रकार की जो तत्व बताए जाते हैं जैसे कि मेथी और जामुन, वह तत्व ले। कई अनुसंधान हुए जिसमें पता चला कि ये सभी चीजें करीब 10-20% ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है, परंतु किसको? बॉम्बे हॉस्पिटल में एक अनुसंधान हुआ था जिसमें यह देखा गया कि जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने आहार को भी नियंत्रण में रखते हैं, उनको यह चीजें 10-20% मदद करती है, और जिनकी ब्लड शुगर करीब 200 के आसपास है उसको भी वह कुछ हद तक कम करने में मदद रुक करती है। तो यह भी लेना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करता हूं कि जिस पर आप प्रयोग करिए, कि सवेरे उठते ही आप करेले का जूस लीजिए, करीब आधा ग्लास करेले का जूस लीजिए कि जो जैसे कहा कुछ हद तक मदद करेगा, और उसके पश्चात जब आप स्नान आदि कर लेते हैं तब 6-6:30 बजे करीब 4 बादाम और 1 अखरोट को रात भर पानी में भिगो दे और सवेरे उठ करके उस समय पूरा का पूरा चबा ले, छिलके सहित इसको चबा ले, क्योंकि उसमें भी अच्छी चर्बी है कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। फिर भोजन से पहले जामुन के जो बीज है, जामुन के बीज का पाउडर बना करके करीब 1 चम्मच पाउडर है वह भोजन से पहले लीजिए, और रात्रि के भोजन से पहले मेथी को थोड़ा भून दे और फिर उसका पाउडर बना करके 1 चम्मच मेथी है वह रात्रि के भोजन से पहले लीजिए। तो इन तीनों रूप से कुछ हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में ये चीजें मदद करेगी, और नियमित रूप से इसका सेवन करके आप ब्लड शुगर को चेक भी करिए। मेरा कहने का यह भाव नहीं कि इससे ब्लड शुगर ठीक हो जाएगी, वह क्योर नहीं होगी परंतु वह कंट्रोल में जरूर रहेगी, इसलिए नियमित रूप से इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जो पहलू बताए उस पर गहराई से विचार करके हमें आहार पर नियंत्रण लाना चाहिए, तो ही हम डायबिटीज पर नियंत्रण ला सकेंगे। ओम शांति।